તારીખ 9/9/1992 આકિંચન ધર્મ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 29 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે.
અપની ભૂમિકા કે અનુસાર સમ્યક દર્શનપૂર્વક જે બી પૂર્વ પ્રારબ્ધ છે સંયોગ इकट्ठे होते हैं, जो भी संयोग प्राप्त होते हैं उसमें नमत्व का अभाव करना चाहिए, अभाव होना चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए आत्मा में से तो जितना ही नमत्व होगा जड़ पदार्थों का, जिसमें शांति नहीं है वहां से सुख लेने की जितनी भी वृत्ति होगी ये अशांति को ले आएगी, उसमें से शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए मुमुक्षुओं से लेकर गृहस्थों को भी अपनी भूमिका अनुसार ये आकुंचन को प्राप्त करना, इन्हीं भावना से अपना परिणमन को ठीक करना चाहिए। विमोहा मोक्षाय सहित निरता सचार उचरिता ग्रहादि त्यक्त्वाय विदयते तपस्ते भी विरला तपस्यन्तमस्मिन् नपियमिनि शास्त्रादि जगतो सहायास्यते ते जगत युविनो दुर्लभतरा। जिनका मोह नष्ट हो गया है, विमोहा जिसका मोह नष्ट हो गया है, दर्शन मोह तो चतुर्थ गुण स्थान में नष्ट हो जाता है और मुनिराज को तो चारित्र मोह भी नहीं है, मैंने जो संजलन का है वो भी अति मंद होता है, इसलिए नहींवत होता है, कहीं भी उनको ममत्व नहीं होता। जिनका मोह नष्ट हो गया है और अपने आत्महित में निरंतर लीन है तथा पवित्र चारित्र को धारण करने वाले हैं और जो गृहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ से तप कर रहे हैं, तो मुनिराज की भक्ति हो रही है, बहुमान हो रहा है और उसमें रस आना निर्मोही दशा वाले मुनियों के चरित्रों को सुनने में, पढ़ने में, उनको ज्ञान में लेने में रस आना, ये भी मोह को नाश करने का, मोह को अनुभाग घटाने के परिणाम होते हैं। जिसको मोह को हटाना हो, मोह को कमजोर करना हो, उनको निर्मोही धर्मात्मा का बहुमान और गुणगान करना चाहिए। ऐसे ग्रहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ, पुण्य के अर्थ नहीं लेकिन मोक्ष के अर्थ तप कर रहे हैं, मैंने अपने आत्मा में अधिक स्थिरता को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे मुनि विरले ही होते हैं। मैंने बहुत कम संख्या में होते हैं ऐसे मुनि जो अपने हित के लिए तप कर रहे हैं। उसी प्रकार अन्य तपस्वी मुनियों को जो शास्त्राधिक दान करते हैं और उनके सहायक हैं, ऐसे योगेश्वर इस जगत में दुर्लभ है। क्या है, मुनि भी ज्ञान ज्ञान दान देते हैं, मुनियों के पास परिग्रह नहीं होता, परिग्रह से तो ममत्व तोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया, जग को दे दी जग की निधियां, जगत की निधि अपने पास नहीं रखे, बाह्य में भी नहीं और अंतर में भी नहीं, ऐसे मुनिराज को दान देने के लिए क्या चीज है इनके पास, कि इनके पास जो ज्ञान है तो ज्ञान का ज्ञान दान वो देते हैं, या तो कोई ग्रंथ है अपने बनाया हुआ हो या पूर्वाचार्यों का हो उसका भी वो दूसरे मुनिराज को दान देते हैं। अगर कोई मांगते हैं तो फौरन दे देते हैं, उनको इस पर भी ममत्व होता नहीं है। मुनियों के शास्त्र का अगाध ज्ञान हो तो भी उसका उनके ममत्व यानी अभिमान नहीं होता। राग द्वेष मोह आदि परिणाम तो अंतरंग परिग्रह है ही, किंतु शास्त्र का सूक्ष्म ज्ञान है, बाह्य ज्ञान जिसको कहते हैं, जानकारी बहुत होती है मुनियों को भी, फिर भी इसका अहमपना और अभिमान होवे तो उनको भी परिग्रह कहने में आया है। ऐसा अभिमान नहीं होता। दूसरे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देने में वे किंचित संकोच नहीं करते, उनको कभी ऐसे परिणाम नहीं होते कि मैं इनको सब बात बता दूंगा तो ये तगड़ा सूक्ष्म वाला दूसरा मुनि मेरे से भी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मात्सर्य कभी मुनियों को नहीं होता, ज्ञानियों को भी नहीं होता, गृहस्थों को भी नहीं होता, मुनियों को तो होता ही नहीं। वे संकोच नहीं करते, मैं अपना ज्ञान का सारा रहस्य इससे कह दूंगा बता दूंगा तो वह मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ईर्ष्या का मात्सर्य का विकल्प भी मुनि के नहीं होता। ऐसे परिणामों का वो अभाव कर चुके हैं वीतरागता के सद्भाव में। अन्य कोई अपने से आगे बढ़कर अपने से पूर्व पहले केवल ज्ञान प्राप्त करता हो तो उसमें मुनिराज की अनुमोदना होती है। क्या होते हैं, दो मुनि है एक साथ दीक्षा लिया, सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ हुए और साथ में दीक्षा लेने वाला को किसी को केवल ज्ञान हो जाए और जो छद्मस्थ रहा है उनको प्रमोद होता है, गुणिशो प्रमोद, गुणवान के प्रति प्रमोद आता है, मेरे से आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। किसको ऐसा होता है तो यश नाम कर्म का उदय होने से प्रसिद्धि बहुत मिलती है और जो पवित्रता में आगे बढ़े हुए हैं ज्ञान में भी आगे हो और उसकी प्रसिद्धि नहीं भी हो तो जिसको प्रसिद्धि नहीं है उसको प्रसिद्धि वाले के प्रति ईर्ष्या होना ये परिणाम ठीक नहीं है, उसमें तो अपनी प्रसिद्धि और मान की चाहना आ जाती है और ये दुर्गुण है। ऐसा मुनियों को कभी नहीं होता, वो प्रसिद्धि को चाहते नहीं, पर चाहते तो जंगल में क्यों रहते, उनको तो लोगों के बीच में रहना ही नहीं है। संसारी जीव को तो सबको साथ रहने में अच्छा लगता है, सुहाता है, देखिए हमारे परिवार में तो इतने हैं, आप तो पांच हैं, हमें तो 15 साथ में रहते हैं और इसमें 2-5 भी कम हो जाता है हमको सुहाता नहीं है, घर में खाली खाली लगता है। क्या होता है गृहस्थी को, मुनिराज कहते हैं कि हम तो घर गृहादी को छोड़ करके जंगल में वहां चले गए कि जहां कोई प्राणी आता जाता न हो, अगर जंगल में भी आवागमन दिखता है तो वो स्मशान में चले जाते हैं ध्यान करने के लिए, क्योंकि वहां लोग जाते नहीं बिना प्रयोजन, ऐसे उनको एकांत पसंद है। बिल्कुल संसारियों से विपरीत परिस्थिति है उनकी ऐसे विषयों में तो। इस प्रकार सम्यक दृष्टि गुरुग्रहस्थों को भी ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जो अपने से आगे बढ़ा हो, गुणवान हो, उसके प्रति अनुमोदना और बहुमान होता है। उनको तो विशेष बहुमान होता है, अनुमोदना आती है, वो तो धन्यवाद देते हैं कि अच्छा हुआ आपने अपने इतने अंतर के गुणों को प्रकट किया। विकल्प के समय यदि अधिक गुणवान के प्रति अनुमोदना न हो तो वैसे जीव को अपने आत्मगुण की रुचि भी नहीं है। क्या निकाला गुरुदेव ने? दूसरे से यहां से यहां की बात निकाली कि जो दूसरे गुणवान के प्रति बहुमान या प्रमोद इसको सहज रूप से नहीं आता, हो कृत्रिमता नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है, उनको अपने आत्मगुणों की रुचि नहीं है। जिसको यहां से लगे तो कि जिसको अपने आत्मगुणों को प्रकट करने की रुचि है, स्वभाव की रुचि है, उनको दूसरे ने जिसने भी गुण प्रकट किया हो उसके प्रति बहुमान और अनुमोदना आएगी आएगी और आएगी ही, ऐसा ही बनता है, ये रुचि का स्वभाव है। देखिए क्या होता है, लोग अमेरिका की बात क्यों करता है कि अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, यहाँ के वैभव बहुत है ना, तो इनकी बातें करते हैं कि नहीं करते, वहां जाते हैं नहीं जाते, या अखबार से या वहां के साहित्य को पढ़ करके क्या इनकी प्रशंसा करते हैं, क्या कारण है ऐसी प्रशंसा करने में, क्या कारण है कि उनकी रुचि है, उनको कोई देने वाले नहीं है, यहाँ से प्रशंसा करने से यहाँ से कोई भेजने वाले नहीं है, लेकिन जिनको रुचि पड़ी है, जिसको बाह्य वैभव की रुचि है, वो तो दूसरे बाह्य वैभव वाले को मान देगा, सम्मान देगा, इनकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि उनको वही चाहिए, तो बहुत स्वाभाविक है। रुचि का ऐसा ही स्वभाव है, रुचि का मुनिजन अंतरंग में किंचित भी छिपाए बिना सरलता से, उनको तो बहुत सरलता होती है, सरलता से पात्र जीव को सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं। ज्ञानी को मुनि को ऐसा होता है कि अगर कोई पात्र जीव इनके सामने आता है ज्ञानार्जन के लिए, जिज्ञासा जी आता है, सही जिज्ञासा वाला आता है, तो अपने हृदय का पूरा रहस्य उनको देता है, कलेजा निकाल करके दे देता है। उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं मेरा रहस्य बात क्यों बताऊं, ऐसा कभी होता नहीं, ये असरलता के परिणाम है। ज्ञान दशा में और मुनि दशा में ऐसी असरलता नहीं होती। उपदेश के विकल्प को वे उपदेश के विकल्प को भी अपना नहीं मानते, शरीर को तो अपना नहीं मानते, लेकिन विकल्प में जो राग है रागांश को भी अपना नहीं मानते। जिनके शरीर का और विकल्प का ममत्व नहीं है, अपना शरीर का भी ममत्व नहीं है, तथा आहारम आहार एवं उपदेश आदि के विकल्प को तोड़कर वितराग स्वभाव में स्थित है, ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म में रत मुनिगण इस संसार में धन्य है, धन्य है वे मुनिवरा, कि इसको आज आकिंचन धर्म होता है, कहीं भी ममत्व नहीं होता, अपना क्षोभ का भी नहीं, उपदेश के शुभ राग का भी नहीं, और अपना शरीर का भी नहीं, और शास्त्रादि उपकरण हो तो इनका भी नहीं, किसी का भी नहीं। ये शरीर के अमत्व परिणाम को दिखाते हुए मूलाद का ऐसा वर्णन आता है कि यदि इनके शरीर को काटने के लिए कोई सर्प आता है, बिच्छू आता है, कोई बाघ सिंह आता है, तो अपने स्थान से वो विचलित नहीं होते। ऐसे नहीं कि सर्प सामने आ रहा है तो हम थोड़ा खिसक करके अलग हो जाए तो अपने रास्ते से गुजर जाए, तो हमको काटे नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना शरीर का ममत्व मुनिराज को नहीं होता। और अगर सर्प आया, बिच्छू आया, शरीर पर चढ़ने लगा तो भी वो खिसकते नहीं है, खिसकते भी नहीं पर इनको हटाते भी नहीं। क्या कारण है कि उनको ऐसा विकल्प नहीं आता। विकल्प के काल में वो जान लेते हैं कि वो आया है, शरीर पर चढ़ रहा है, पर विष्णु अपने आंकड़े से वो काटने की तैयारी करता है। लेकिन वो क्या करेंगे, न हटेंगे न उसको हटाएंगे, लेकिन अपने उपयोग को वहां से हटा करके वे स्वरूप में डुबकी लगाएंगे। ये हो जाएगा कि निर्विकल्प शुद्धोपयोग में लीन हो, सप्तम गुण स्थान में चले जाते हैं। और काटता भी है बिच्छू, सर्प भी काटता है, तो भी वो अपने परिणमन में से, स्वभाव में से विचलित नहीं होते हैं। लीनता होती है, जानते ही फिर लीनता कर लेते हैं। विकल्प में आते हैं तो वेदना का ज्ञान होता है, वेदना का पर रूप से ज्ञान होता है, मेरे में वेदना है ऐसा ज्ञान नहीं होता, मेरे में हो रही ऐसा ज्ञान अनुभव नहीं करते, जानते हैं और स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ऐसे इनकी परिणति में स्वमेव वितराग दशा का वृद्धिगत होना, ऐसी एक परिणति सहज हो गई है, बन गई है। ऐसे मुनिवरों को कहते हैं कि ये धन्य है मुनि ऐसे कि जिनको अपना शरीर का भी ममत्व नहीं होता। उनके चरित्र दशा विद्यमान है और केवल ज्ञान प्राप्त करने की पूरी तैयारी है। किसमें लगे हैं वे, केवल ज्ञान के प्राप्त करने की तैयारी में दिन रात हरनिश लगे हुए हैं, कोई काम की फुर्सत उनको नहीं है। मुनिराज कभी अपने सिर पे कोई काम करने का बंधन स्वीकार नहीं करते, मैं इतना कर दूंगा, ये काम कभी मुनि करते नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान की तैयारी में पड़े हैं। उनको पता है कि इस काल में केवल ज्ञान की उपलब्धि विच्छेद गई है तो भी इनकी भावुकता रोकी जाती नहीं, क्योंकि भावुकता को हद नहीं होती, भावना को हद नहीं होती। देखिए क्या भावना करती है, काम ज्ञान है उनको, आगम का ज्ञान है, ये पंचम काल है, पंचम काल में इस क्षेत्र में, इस काल में जिसने जन्म लिया वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, सातों गुण स्थान से आगे नहीं जाता, तो भी उनकी तैयारी केवल ज्ञान की है, उनका पुरुषार्थ केवल ज्ञान के लिए है, वो अपना समय और शक्ति कहीं और जगह बर्बाद नहीं करते। वैसे केवल ज्ञान प्राप्त करने की पूरी तैयारी है। 12 अंग का ज्ञान हो तो भी उसमें आसक्ति नहीं है, ये लब्धि से पैदा हो जाता है। मुनिराज को ये 12 अंग का ज्ञान कुछ पढ़ने से नहीं आता, वो तो इतना विस्तार वाला है कि पढ़ने जाए तो किसी का आयुष्य उतनी मर्यादा में मनुष्य का नहीं होता, लेकिन उनको अंतरलिंगता में लब्धियां प्राप्त होती है, उसमें 12 अंग की लब्धि भी हो जाती है, तो भी इसकी आसक्ति नहीं, उसका ममत्व नहीं है, उसका अभिमान नहीं है, उसका अहंकार नहीं है। कभी किसी समय किंचित उपदेश आदि की वृत्ति उठती है, कोई धर्मलोभी जीवों को देख करके, क्या सबको देख करके नहीं, ज्यादा संख्या होती है इसलिए नहीं, राजा महाराजा सेठ साहूकार आए हैं इसलिए नहीं, क्या क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहते हैं कि जो धर्मलोभी होते हैं, योग्यतावान होते हैं, उनको देख करके कभी उनको उपदेश की वृत्ति भी उठती है। उसे छोड़कर, ऐसी वृत्ति को उसको भी छोड़कर स्वभाव में एकदम संपूर्ण स्थिरता द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करने के कामी है, इच्छुक है, ऐसे मुनिजन दुर्लभ है, ऐसे मुनिजन इस संसार में उसका दर्शन होना ही दुर्लभ है, बहुत कम संख्या में ऐसे होते हैं, ऐसे मुनिजन दुर्लभ है। उपदेश आदि में किसी उच्च बात को अथवा महिमामंत न्याय को मुनि कभी छिपाते नहीं है, कि बड़ी बहुत ऊंची बात है, मुझे अपने में रख लेनी है, ये रहस्यभूत बात है, किसी को नहीं देनी है, ऐसा होता नहीं। ये व्यापार में होता है, दुकानदारी में होता है, कि कोई रहस्य को पकड़ लेता है तो अपना कंपटीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इनको तो संसार की दुकान बंद कर दी है, क्या मुनिराज ने तो सारे संसार की दुकान बंद करके केवल ज्ञान के प्रति वो चलने लगे हैं, उनको कभी कोई छिपाने का भाव नहीं आता। छिपाते नहीं, ज्ञान दान देने से कहीं ज्ञान कम रह जाता हो ऐसा नहीं है, किंतु उल्टे अपने ज्ञान स्वभाव की भावना का मंथन करने से उपदेश के काल में ज्ञान एकदम विकसित होता जाता है। बाहरी चीजों की तो ऐसी बात है कि जितना दे दिया उतना कम हो गया, 1000 में से 500 का दान दिया तो 500 बाकी बच गया। ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञान जितना ज्ञान दान देते हैं उतना ज्ञान बढ़ता जाता है, एक अक्षय पात्र है, क्या आत्मा ज्ञान भंडार ऐसा है कि वो अक्षय पात्र है ज्ञान का, जितना ही ज्ञान निकलता है उतना ही अंदर में से बाहर आने लगता है। तो कुएं की उपमा दी जाती है, अपने भक्ति में आके पूजा में आता है कुआ की तरह, कि कुआ में से पानी निकालो पानी आ जाएगा, कुआ खाली होने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञान को स्वभाव की भावना और मंथन के कारण और विकसित होता जाता है। जितना ज्ञान देते हैं ज्ञानी मुनि, ऐसा उनका ज्ञान और प्रकट होता जाता है, विकसित होता जाता है। लोक व्यवहार में भी जिसे अपने पुण्य का विश्वास होता है, वह जीव दान में, लक्ष्मी आदि खर्च करने में सहज में ही उदार होता है। क्या कहते हैं यहाँ पर सुगुरुदेव ने एक दूसरी बात लिया है, कि संसार में भी एक ऐसी भीतर में विश्वास की एक परिणति होती है, कि जिसको अपने पुण्य पर विश्वास है तो गृहस्थ धर्मादिक में पैसे खर्च में मैं कभी हिचकिचाते नहीं है। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत दान दे दूंगा, धर्म के कार्य में ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तो मेरे पास कम रह जाएंगे और कम रहने से मेरी अनुकूलता कम हो जाएगी, प्रतिकूलताएं बढ़ जाएगी, ऐसा अविश्वास जिसको जो पुण्यवंत है उसको नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि हम तो देते रहो, हमारा पुण्य इतना है कि आते रहेंगे, इसलिए हमें कोई देने में हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा सहज होता है पुण्यवंत को, ऐसा सहज परिणाम होता है। तो फिर ज्ञानी को तो भीतर में ज्ञान भंडार, अनंत ज्ञान का भंडार देखा है, उनको तो इसमें कोई संकुचित वृत्ति आती ही नहीं कि हम ज्ञान दे देंगे तो हमारा ज्ञान क्या में कमी हो जाएगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जो पुण्यवंत है उसको अधिक लक्ष्मी खर्च करने से मेरे पैसे कम हो जाएंगे ऐसी शंका भी उसको दहशत भी नहीं आती, शंका भी नहीं होती उनको, वो गिनती नहीं करते हैं पीछे कितना रह गया, उतना दे दिया तो पीछे कितना रह गया इसकी गिनती वो करने वाले नहीं है। हमारे यहाँ तो इसे कहते हैं कि वितराग मार्ग है, ऐसा सन्मार्ग विश्व में इनकी तुलना में इनकी बराबरी में कोई मार्ग नहीं है। फिर ऐसा महान सर्वज्ञ जैन परमेश्वर का मार्ग है, अगर इसकी प्रभावना होती है तो पेट को पाटा बांध कर भी प्रभावना करनी चाहिए। पेट को पाटा बांध कर क्या समझते हैं आप, है गुजराती में वो कहवत है, आपके यहाँ कुछ और होगी। पेट को पाटा बांधना मतलब ये है कि कोई गरीब आदमी है, कोई मिठाई विठाई नहीं खा सकता है, खिचड़ी तो खा सकता है थोड़ी बहुत परिश्रम करने से, मजदूरी का काम करता हो तो घर में दो मुट्ठी खिचड़ी तो ले आ सकता है पेट भरने के लिए। अगर ये खिचड़ी में भी कमी करनी हो तो दो मुट्ठी में से एक मुट्ठी करना हो और पेट में खड्डा थोड़ा रह जाता हो भूख का, तो भी सन्मार्ग में एक मुट्ठी लगा देनी चाहिए। ऐसी भावना धर्मात्माओं को होती है, ऐसी भावना ग्रस्त मुमुक्षुओं को और धर्मात्माओं को होती है। तो पेटे पाटा बांध करके भी, पटिया बांध करके भी सन्मार्ग की वृत्ति करो अगर हो सकती है तो, इसमें हमें संकोच करना नहीं है। मार्ग प्रभावना की मार्ग भक्ति है, उसमें क्या है उसको मार्ग भक्ति कहते हैं, जिसको अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा अपना आत्म कल्याण चाहिए, उसको रहस्य भक्ति कहते हैं, उसको प्रेम भक्ति भी कहते हैं। कि संसार के प्रेम की बात नहीं हो तो स्वार्थ का होता है, उसमें तो कुछ भी अनुकूल नहीं पड़ता है तो गुस्सा आ जाता है, राग के स्थान राग का स्थान द्वेष ले लेता है, वो निर्दोष प्रेम नहीं है। स्वार्थ का प्रेम संसार में होता है, जो सही प्रेम होता है वो तो समर्पण करता है, वो कुछ मांगता नहीं है, तो उसको प्रेम भक्ति भी कहते हैं और उसको रहस्य भक्ति भी कहते हैं। इसका रहस्य वो है कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवा अपना आत्म कल्याण, तो उसमें उसका दर्शन वो है, वो अवश्य अनुभाग उसका गढ़ जाता है, तो उस भीतर में ऐसा कोई रहस्यभूत लाभ होता है, इसलिए उसको रहस्य भक्ति कहने में आई है। कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे उसको शंका नहीं होती कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे, वैसे ही लोकोत्तर मुनिवरों को भी अपने पुरुषार्थ की प्रतीति है कि मेरे ज्ञान का विकास रुकने वाला नहीं है, मैं अल्पकाल में केवल ज्ञान लूंगा, मेरा ज्ञान में अभी कमी होने वाली नहीं है, ऐसा विश्वास उनको होता है। अपने स्वभाव के आश्रय से मेरे ज्ञान की वृद्धि ही है, तो प्रगत रूप को शास्त्र ज्ञान देने में किंचित भी हिचकिचाहट नहीं करते, थोड़ी भी हिचकिचाहट को नहीं करते, स्वतः को उपदेश की वृत्ति में अटकने की भावना नहीं है, वो उपदेश के राग की वृत्ति में शुभ राग में अटकने का अभिप्राय नहीं रखते, किंतु वृत्ति को तोड़कर वो स्वभाव में ही एकाग्र रहकर पूर्ण ज्ञान की भावना है, जिसको ऐसे मुनिवरों को उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। मूल बात को जो चलती है वो धर्म का आकिंचन्य रूप कैसा होता है उसकी बात चलती है। ये जो दसों लक्षण है वो धर्म का स्वरूप है, धर्म का ये रूप है, धर्म ऐसा होता है, मैंने उसमें परसेंटेज नहीं है, 10% क्षमा का, 10% है वो आकिंचन्य का, 10% है आर्जव का, 10% मार्दव का, ऐसा नहीं होता, सब का सो कैसा होता है, ऐसा होता है इसमें, ये धर्म का स्वरूप है अपना। आकिंचन अर्थात परिग्रह रहितता, आकिंचन है तो शास्त्र परिभाषा का शब्द है, उसका बहुत सादी भाषा में परिग्रह रहितता ऐसा कहने में आया है। मुनियों को तो तिल तुष परिग्रह बाह्य में होता ही नहीं, जिसको कुछ भी परिग्रह हो थोड़ा भी तो भावलिंगी मुनि तो नहीं होते, तो द्रविलिंगी किंतु भी वो नहीं होते, निष्परिग्रह होते बाहर में, और अंतर में भी जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय है वो परिग्रह भी मुनियों को नहीं होते। ऐसे वीतरागता की मूर्ति समझो, अमूर्त ऐसे वीतराग परिणाम को यदि किसी को मूर्तिमंत रूप में देखना हो, दर्शन करना हो, तो ये भावलिंगी मुनिराज में वो मूर्तिमंत रूप से देखने में आता है। ये अपना अष्टपाहुर रहने भगवान कुंडकुंड स्वामी का अष्टपाहुर जो शास्त्र है वो तो दार्शनिक शास्त्र है हमारा, शास्त्रों में भी अलग अलग पहलू है, इसमें ये कुंकुंड स्वामी की जो रचना है वो दार्शनिक है। क्या हुआ कि भगवान महावीर स्वामी के पश्चात करीब 500 साल में कुंकुंड स्वामी की उपस्थिति हुई है, और उसी काल में इस श्वेतांबर मत का प्रारंभ हुआ। तो जब मूल धर्म पर कोई आघात होता है, प्रत्याघात होता है, प्रहार होता है, विटंबना आती है, यानी किसी भी प्रकार का उपद्रव होता है, तो मुमुक्षु हो, धर्मात्मा हो, मुनिराज हो, उनको उसके सामने तल्लाक आए बिना नहीं रहती। तल्लाक क्या कहते हैं, जोर से निषेध आना, उसको तल्लाक कहते हैं। तो भगवान कुंडकुंड आचार्य देव तो महा दिगंबर संत, छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले जंगलवासी संत थे, उनको भी निषेध आया बहुत जोर से, इतना जोर से निषेध आया कि क्या नया पाखंड चालू हो गया हमारे सामने, हम बर्दाश्त कर सकते नहीं। तो ये उन्होंने एक रचना की अष्टपाहुर की, उसमें भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं इनका वर्णन किया है। तो उसके प्रथम प्रकरण में ऐसी बात दिया है के भाव लेंगे मुनिराज है, ये मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग है। कैसा है मोक्ष मार्ग? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अमूर्त आत्मा के अमूर्त परिणाम है। क्या है? आत्मा स्वरूप से अमूर्त है और इनके शुद्ध परिणाम भी अमूर्त होते हैं, फिर भी मोक्ष मार्ग के को मूर्तिमंत किसी को दर्शन करना हो तो ये भावलिंगे मुनिराज को दर्शन कर सकते हैं, ऐसा लिया है। बहुत सुंदर अधिकार लिखा है, भले ही दार्शनिक लिखा है लेकिन मुनियों का स्वरूप कैसा होता है हमारे जिन मार्ग में, उसका बहुत तादृश स्वरूप इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है। कहते हैं कि ऐसे धर्म मुनियों को आकिंचन धर्म यानी परिग्रह रहितता होती है। परिग्रह, परिग्रह किसको कहते हैं? भगवान उमा स्वामी ने क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। क्या सूत्र दिया? मूर्छा परिग्रह। ममत्व में इतना तीव्र ममत्व परद्रव्य के प्रति, देहादि के प्रति जीव को हो जाता है कि वो अपने आप के स्वरूप को भूल जाता है, मूर्छित हो जाता है जैसे कोई, तो उसको शुद्ध नहीं रहती। वैसे स्वरूप की शुद्ध जिसको नहीं रहती उसको मूर्छा नामक परिग्रह है। ऐसा ममत्व अपने आत्मा को दुख पहुंचाने के लिए होता है। अगर हमें हमारी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है तो इस मूर्छा को हमारे हमें हटा देना चाहिए। ये ममता ही मूर्छा ही परिग्रह है। ममता रहित वीतराग भाव सो उत्तम आकिंचन धर्म है। वेद ज्ञान द्वारा, देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, वेद ज्ञान द्वारा मैंने अपने से भिन्न है अपना आत्म स्वभाव, वहीं अपनत्व समाप्त हो जाना चाहिए। क्या? वेद ज्ञान में तो जो अपना स्वरूप है, अपना अपना मूल तत्व है आत्म स्वभाव, वहां अपना अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी कुछ है वो पर है, उससे भिन्न स्वभाव का अपना अनुभव करना, ऐसा वेद ज्ञान द्वारा पर से भिन्न स्वभाव को जाने बिना पर के ऊपर का ममत्व दूर नहीं होता। भिन्नता का ज्ञान बिना पर का ममत्व छूटता नहीं। क्या कहने का अभिप्राय है? कि कहीं लोग इस विधि को नहीं समझते हैं कि ममत्व यहाँ से छोड़ना है। यहाँ तो ममत्व वैसा का वैसा रह जाता है, वेद ज्ञान चलता नहीं है और बाह्य पदार्थ का त्याग कर देता है, तो भीतर में तो रस रह गया, ममत्व का रस रह गया, और बाहर में त्याग कर दिया तो वृत्ति को तो दमन करेगा। त्याग करने से वृत्ति को तो हट से भी दमन करेगा, लेकिन अंदर भीतर में रोग है, वो रोग तो ममता का गया नहीं, पर बाहर में पाका पिंडी कर ली, मरामत कर ली, ये रोग और कहीं निकलने वाला है, जोर से उछल के बाहर आएगा, कभी आएगा तो इसलिए इनकी सही विधि ये है के पहले अपने ममत्व भाव को दूर करें। साथ ही जब ममता ही नहीं रहेगी तो ये परिग्रह की वृत्ति शांत हो जाने से परिग्रह की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी सहज ही शांत हो जाएगी। ऐसे वेद ज्ञान द्वारा पर से भिन्न स्वभाव को जाने बिना जो ऊपर का ममत्व, जो पर के ऊपर का ममत्व है वो दूर ही नहीं होता, और दूर नहीं होता तो उसका जो त्याग है वो सफलता को प्राप्त नहीं होता, और फिर भी त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को धर्म कहने में नहीं आता। त्याग धर्म है कि नहीं है, कि त्याग पर पदार्थ का जो है वो तो ममत्व के अभाव में धर्म का धर्म के उपचार को प्राप्त होता है। अगर उस पर ममत्व नहीं छूटा और त्याग किया तो वो त्याग सच्चा त्याग नहीं होता। कुछ लोग तर्क करते हैं कि भाई त्याग किया तो सही ने, उतना तो किया ने, तो ऐसा अनुमोदन करना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें विधि की भूल है। क्या भूल है? विधि की भूल है। जिस विधि से धर्म होता है, हमारे जिनेन्द्र परमात्मा ने जिस विधि से धर्म किया है उन्हीं के मार्ग पर हमें चलना है। हमारा घर का मार्ग निकालना नहीं है, वो मार्ग नहीं है किंतु उन मार्ग हो जाता है, मार्ग रहता नहीं। इसलिए हमें ये बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि त्याग कैसे होता है, क्योंकि लोग त्याग में जैसे कोई भाषा में चक्कर खाते हैं वैसे कहीं लोग त्याग में भी चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म का विषय है कि बहुत बहुत समझदारी का विषय है, कोई ऊपर ऊपर चलने की चीज नहीं है। ऐसे यहाँ पर आकिंचन धर्म का जो विषय है वो तो अपने समय की मर्यादा